नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज़ाद होने से लेकर आज तक हम गधेड़ेपन के मारे हैं, क्योंकि हमारे माई बाप तो सरकारें हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो खुद को ईश्वर का अवतार ही मान चुके हैं, तो सरकारें ही मास्टर हैं और वही तय करती हैं कि शिक्षा कैसी हो। जैसा कि सनातन परंपरा में प्राचीन काल से शिक्षा का आधार गुण, संस्कार, स्वभाव रहा है, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में ये सब गायब है और इंसान उनकी तरह जहां गधे घोड़े सब बराबर माने जाते हैं। शिक्षित करने और होने का मतलब प्रतिभा की बजाय जुगाड़, पैसा, रट्टा, आरक्षण जैसा वो साधन जिससे गधों को मनुष्य बनाने की अनोखी शिक्षा प्रणाली इजाद कर दी गई है। इसीलिए अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है गधेड़ों। क्या गधा मनुष्य हो सकता है? हाँ, भारत में सब संभव है। वह राजा बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, कुछ भी बन सकता है, बस माट सा यानी मास्टर साहब उसको पढ़ा दे। मारवाड़ी मेवाड़ी में गधेड़ों को मनक यानी मनुष्य बनाने की एक व्यंगात्मक लोक कथा है। पर गधा मनुष्य बना तो भी अपनी प्रवृत्ति से कैसे बाजा सकता है? उसके न काज के और न काम के मिजाज के साथ खा खा कर मुटियाने और दुलत्ती मारने की आदत नहीं जाएगी। मेरा मानना है कि स्वतंत्र भारत के 78 वर्षों का यह अभूतपूर्व जुगाड़ है जो गधेड़े को मनक बनाने में अपनी यूनिक शिक्षा विकसित है। इस आविष्कार या जुगाड़ के 5 तत्व हैं: गधापन लिए प्राणी, दूसरे माटसा यानी मास्टर, तीसरे अंग्रेजी भाषा, चौथे रट्टा मार पढ़ाई और अंत में बेचारा भोला धोबी या जनता। हाल में अमेजन प्राइम पर एक लघु फिल्म देखने को मिली, शीर्षक है गधेड़ों डोंकी। लोक कथा पर बनी यह फिल्म मुश्किल से 15 मिनट की होगी। फिल्म बनाते हुए फिल्मकार का व्यंग कटाक्ष क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन इस छोटी सी फिल्म के मेरे जितने अर्थ हैं वे आधुनिक भारत की सच्चाई हैं। उस भीड़ की भी सच्चाई जो बचपन से जवानी तक या तो टाइम पास करती है या जो सर्व शिक्षा के नाम पर मनक हो जाने का ठप्पा लिए होती है और लायक होने के लिए वैसे ही जुगाड़ बैठाती है जैसे गौरव धोबी अपने गधे को मनक बनाने के लिए माटसा को पैसे देकर जुगाड़ बनाता है। माटसा यानी शिक्षक का जुगाड़ क्या है? अंग्रेजी की 12 खड़ी आना और उससे शिक्षा व टाइम पास। कक्षा में लड़के सो रहे हैं, लेटे हैं, मुर्गा बने हैं, मटर गश्ती या क्लास के बाहर खड़े हैं और माटसा ब्लैक बोर्ड पर चौक से अंग्रेजी में संडे मंडे जैसी शब्दावली के उटपटांग उच्चारण वर्तनी से पढ़ा रहा है। माटसा अपने में मगन है, मस्त और खामोख्याली का जीवन है, देश के मनुष्यों का निर्माण कर रहा है। गौरव धोबी कौतुकता से माटसा के काम को देखता है, सोचता है यह क्या है। वह माटसा के आगे निठल्ले खड़े बैठे अलमस्त चेहरों में अपने गधे का ख्याल बनाता है, उससे रहा नहीं जाता है। वह माटसा से पूछता है, तुम क्या करते हो? वह गौरव को ज्ञान देता है, मैं गधेड़ों यानी गधों को मनक यानी मनुष्य बनाता हूँ। भोले गौरव का दिमाग दौड़ता है और एक दिन माटसा को रोक विनती करता है, माटसा मेरा यह गधा है कुछ नहीं करता है, दिन भर खाता रहता है। कहते हुए माटसा के हाथ में नोट की एक गड्डी थमा देता है और माटसा भोले गौरव की मूर्खता से मौके को लपक लेते हैं। वह उससे गधे के गले की रस्सी ले लेता है और उस गधे को दूसरे धोबी को बेचकर बात भूल जाता है। लेकिन धोबी तो गधे के मनक बनने की प्रतीक्षा में है। 6 महीने बाद वह माटसा के पीछे पड़ता है, बार बार अपने गधे को लेकर तकाजा करता है कि वह मनक बन गया, वह कहाँ है। आखिर तंग आकर माटसा उससे पिंड छुड़ाते हुए जवाब देते हैं, हाँ वो मनक बन गयो, शहर में वह तहसीलदार है। गौरव और उसकी पत्नी गधेड़े के मनक बनने की खुशी में उछलते हुए उसके तहसीलदार बनने की बात सुन रस्सी लेकर उसे घर लिवा लाने के लिए शहर की ओर चल देते हैं। शहर में तहसीलदार ऑफिस पहुंच उसके कमरे के बाहर से उसे देखते हैं, सोने की चेन, कड़े पहने एक मोटे अफसर को देख खुश होते हैं। कमरे के बाहर चपरासी से भिड़ते हैं। गौरव कहता है, मैं उसका मालिक हूँ और देखो मैं रस्सी लेकर आया हूँ। तो इस शोर को सुन तहसीलदार बाहर निकलता है और बहस कर रहे गौरव को पीछे से कसकर लात मारता है। बेचारा गौरव चारों खाने चित। वह कराते हुए उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, गधों भले मनक बन जाए फिर भी दुलत्ती मारने की आदत ना जाएगी। अब इस तस्वीर में भारत के भोले लोगों की ठगाई, बिना स्वभाव संस्कार के अंगूठा छाप साक्षर बनाने की जिद तथा मुफ्त या पैसों से या आरक्षण से गधेड़ों को मनक बनाने की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था और उसकी नौकरियों व नौकरशाही मंत्रियों के समाज को तौलो तो 140 करोड़ लोगों में गौरू जैसे आम लोगों के अनुभव व नियति का क्या साक्षात्कार नहीं होगा। बेचारा गौरू अपनी मासूमियत में मनक बनवाने की शिक्षा और व्यवस्था से कैसे तो धोखा खाते हुए, जेब कटवाते हुए और फिर दुलत्ती लात व लाठी खाने का भाग्य लिए हुए है। फिल्म का यह सीन भी पते का है जो गौरू धोबी के यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और गधा निठल्ला खड़ा है। यह इस सच्चाई का प्रतीक है कि गांव, कस्बों या शहरों में जो पुश्तैनी काम थे, जातीय वर्ण व्यवस्था से जो स्किल, काबिलियत, हुनर था, उस सब का मशीनी युग में अर्थ नहीं है और निठल्ले बेकार नौजवानों के लिए अंग्रेजी की ABCD में रेंकना, रट्टा मार करके मनक बनने की डिग्री व ठप्पे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे मनक बनने से ही तो नौजवान के लिए कांस्टेबल, सिपाही, पटवारी, कलेक्टर, कोतवाल, मंत्री बनने की लाइन है, वह लाइन जिससे दुलत्ती मारने, लाठी के पावर से लोगों को हाँकते रहने की वह परंपरा कायम है जो सदियों की गुलामी से शाश्वत है। दुलत्ती दर दुलत्ती और रेखते ही रेखते और अपने आप को विश्व गुरु मानना। याद करें अपनी उन कहावतों को कि गधा गावे ऊंट सराहे, गधा घोड़ा देख कर ही रेके, गधा घोड़ा एक भाव, गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, गधे की खातिर सर मुड़वाए, गधों के गले में गजरा, गधों की यारी में लातों की तैयारी। गधे ही मुल्क जीत लें तो घोड़ों को कौन पूछे, गधे के ऊपर वेद लदे, गधा न बेदी होए। हाँ, हमारा कलयुग गधे और गधेड़ों का ही है। और नोट रखें, अभी तो वॉशिंग मशीन से गधे बेकार हैं, लेकिन आने वाले 1-2 दशक बाद तो नकली बुद्धि या कि AI से गधों को मनक बनाने के माटसा भी नहीं होंगे और न ही साक्षर गधेड़ों के लिए काम होगा। मैंने हाल में सनातन परंपरा की शिक्षा व्यवस्था पर पढ़ा है, इसलिए मनक बनाने की मौजूदा प्रक्रिया से हटकर भारत के उस समय की वर्ण व्यवस्था, गुरुकुल पढ़ाई तथा शिक्षक की भूमिका पर भी जरा गौर करें। तब मान्यता थी कि संस्कार से बच्चे के स्वभाव विकसित होने के बाद ही उसकी काबिलियत व गुणों के अंकुर फूटते हैं, तब तक उसके कर्म, वर्ण व करियर का निश्चय नहीं हो सकता। तब जाति और वर्ण जन्म से तय नहीं था, बल्कि कर्म से वर्ण का संबंध था। व्यक्ति के गुण कैसे हैं, वे काम की कैसी प्रवृत्तियां लिए हुए हैं, इसकी दिशा जानकर गुरुकुल का गुरु तय करता था कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, वह किस कर्म, किस वर्ण श्रेणी यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए फिट है। मतलब भले जन्म से कोई बड़े परिवार का बच्चा हो, लेकिन उसके संस्कार, संगति, स्वभाव में ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका प्रभाव संस्कार निर्माण में जन्म के प्रभाव से भी अधिक भारी व प्रबल हो। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण की संतान क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ भी हो सकती है। शूद्र का बेटा ब्राह्मण का कर्म करने वाला हो सकता है। इस परंपरा के प्रमाण ठोस हैं कि वर्ण या कि काम, शिक्षा की दिशा का निश्चय बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई से शुरू होता था। बालक का बतौर मनुष्य संस्कार, दीक्षा के नाते उपनयन, जनेऊ संस्कार के बाद बच्चे गुरुकुल जाते थे। इस संस्कार की कसौटियों में जिसका जल्दी या देरी से संस्कार होता था, उस अनुसार भी लक्षण बनता था कि वह किस कर्म, जाति के गुण लिए हुए है। यदि कोई छात्र 5-7 साल की उम्र में ही उपनयन संस्कार योग्य हुआ तो समझा जाता था कि वह बच्चा ब्राह्मण वर्ग का होगा। 8-9 वर्ष की उम्र में उपनयन प्राप्त करने की योग्यता के छात्र का क्षत्रिय वर्ण में तथा 11-12 वर्ष की उम्र में उपनयन होने के मायने की बच्चा वैश्य वर्ण के काम की संभावना वाला है। और जो इस उम्र तक भी उपनयन की योग्यता की कसौटी में खरा नहीं, वह शूद्र श्रेणी के सेवा कार्यों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। गुरुकुलों में शिक्षक द्वारा बच्चों के ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण से उन्हीं के द्वारा शिक्षार्थी के मिजाज, प्रवृत्ति के अनुसार वर्ण, करियर विशेष की काबिलियत की शिक्षा शुरू होती थी। उपनयन प्राप्त किए हुए छात्रों में भी गुरु छटनी करते थे। शिक्षक की जिम्मेवारी थी कि वह छात्र पर नजर रखें, उसके गुण, कर्म तथा स्वभाव को बूझते निरीक्षण कर उसके बारे में निर्णय बनाए। तब मान्यता थी कि 12 वर्ष की उम्र तक लड़के लड़कियों का स्वभाव परिपक्व होता है। यदि छात्र स्वतंत्र माहौल में पले तो 16 वर्ष की उम्र तक उसके वर्ण का निर्णय होता था। इस आयु के बाद पूरी तरह वर्ण अनुरूप उसकी शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। जाहिर है, सनातन धर्म की मूल धारणा है कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने गुण अवगुण काबिलियत में अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग करियर का स्वभाव लिए हुए है। प्राणियों में पशु अपनी अपनी प्रजाति में जैसे एक से होते हैं, गधे गधे ही होंगे तो हंस हंस, लेकिन मनुष्यों में स्वभाव के फर्क से गधेड़े हैं, शेरदिल हैं, बुद्धिमान हैं, कारोबारी मिजाज के हैं तो नौकरी पेशा सेवादार भी। कोई ना माने इस बात को, लेकिन अंग्रेजों के समय तक भारत की शिक्षा में, अंग्रेजों की नौकरी व्यवस्था में, सेना से लेकर वायसराय के स्टाफ तक की नियुक्तियों में भारतीयों के संस्कारगत स्वभावों के अनुसार लोगों की छटनी का काम था। अंग्रेजों की बराबरी के ICS अफसर या प्रोफेसर सैनिक ओहदों कारोबारियों को मौका सब में कॉम्पिटिशन यानी रट्टा मार अंग्रेजी परीक्षाओं का नहीं था, और शिक्षक भी काबिल चुने जाते थे। वही लाठी कलम लिए अफसर भी वर्ण कर्म स्वभाव के अनुसार होते थे। इस सत्य के भी प्रमाण है कि मुगल दरबार हो या अंग्रेजी शासन, सब में ईमानदारी चरित्र और बुद्धि का मान था। अकबर के दरबार से वायसराय जनरल की परिषदों के चेहरे इसके प्रमाण हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 से सितंबर 2024 के मौजूदा समय तक, नेहरू से लेकर मोदी तक का भारत अनुभव क्या है? भारत उस गधेड़ेपन का मारा है जिसमें सरकार माई बाप है और प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान मानते हैं। सरकार माटसा यानी मास्टर बन गई है, उसी से शिक्षा तय है और गुण संस्कार स्वभाव सब गौण है। गधे घोड़े सब बराबर हैं। जुगाड़ और पैसों से गधेड़ों को मनक बनाने की प्रक्रिया है। नतीजतन शिक्षा और अवसरों में जहां भयावह असमानता बनी है, वहीं सारा सिस्टम ही मानो गधेड़ों के लिए, गधेड़ों द्वारा गधेड़ों की दुलत्ती को समर्पित है। क्या मैं गलत हूं? पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।